जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहंतालम नमो सिद्धालम नमो आयरियालम नमो वज्जायालम नमो लोये सर्वसाहूणम त्वयि सति परमात्मन् मादृशान् मोहमुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्धकेशान् यजेहम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा लमियूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंशनसहावम् वोच्छामि नियमसारम् केवलिसुदकेवलीवणिदम् आचार्य कुंदकुंद देवकृत निज भावना के लिए बनाया गया ये नियम सार परमागम शास्त्र यहाँ विराजमान है। इस पर गाथा 139 गाथा पर अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री का मंगल प्रवचन अभी सुना है। कभी कभी गुरुदेव की जो बोलने की टोन है वो जैसे गुलाब जामुन वगैरह चाशनी में डूबी हुई होती है, चाशनी समझते ना शक्कर का जो लिक्विड, वैसे वैराग करुणा वगैरह के रस में डूबे हुए शब्द निकलते। आज का जो उनका प्रवचन शैली थी वो भी बिल्कुल एक बहुत गंभीर और वैराग की टोन में थी, और उसमें भी पूरे व्याख्यान में उन्होंने गृहित मिथ्यात्व के ऊपर बहुत कठोर प्रहार किए हैं। ये एक मंगलमय आयोजन है कि गुरुदेव की माध्यम से जिनागम का स्वाध्याय का प्रचार प्रसार सारे भारत में और दुनिया भर में फैले। यहां तो आप लोगों को सब पता है इसलिए मुझे ज्यादा कहने का भाव नहीं आता। मैं हिंदी भाषी समाज में जब जाता हूं तो बहुत विस्तार से बात करता हूं, क्या कहता हूं वो आपको सुनाता कि पूज्य गुरुदेव श्री के वियोग के बाद में ऐसा लगा था जैसे एक अंधेरा हो गया हो बिल्कुल, लेकिन धन्य है वो घड़ी और वो पल जब नवनीत भाई को ये विचार आया होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए गुरुदेव का कैसेट रिकॉर्डिंग होना चाहिए। और उस जमाने में तो कोई साधन इतने थे नहीं, वो बड़े बड़े डब्बे रहते थे और वो वायर पे और स्पूल वगैरह में सब हमने देखे, वो स्पूल में रिकॉर्डिंग होती हुई। मैंने सुना है कि कई लोगों ने नेगेटिव अप्रोच भी की, कौन संभालेगा, कौन देखेगा, कौन सुनेगा, क्योंकि गुरुदेव हाजिर थे तो वो रिकॉर्डिंग की कोई इतनी वैल्यू भाषित नहीं होती थी। नवनीत भाई की दूरदृष्टि गजब की थी, उन्होंने समझ लो आज का जमाना उस समय देख लिया कि ये भावी पीढ़ी को ये वाणी कैसे मिलेगी। तो उन्होंने एक साल तो अपने खर्चे से रिकॉर्डिंग की और फिर बाद में ट्रस्ट को भी लगा कि नहीं अभी इनका, वो तो ट्रस्ट के अध्यक्ष थे ही, तो उन्होंने कहा कि जब इनका भाव है तो अपन को करना चाहिए। वास्तव में नवनीत भाई के उस संकल्प को और दूरदृष्टि को जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है। लेकिन वो पुरानी टेक्निक वो सुरक्षित नहीं थी ज्यादा और वो सब धीरे धीरे काल के गाल में समा रही थी, नष्ट हो रही थी, सुरक्षा उसकी नहीं हो रही थी। तो ये दूसरा जो उपक्रम हुआ कि उसको आधुनिक रूप में सीडी में कन्वर्ट किया गया, तो यहां तो मुझे कहने में संकोच होता है, पर मैं बाहर बहुत खुल के कहता हूं कि ये तो गुरुदेव का पुनर्जन्म भरत क्षेत्र में दोबारा हो गया। ऐसा मंगलमय कार्य ये सीडी के माध्यम से हुआ है। मात्र सीडी बनके रख दी जावे यहीं तक वो प्रोजेक्ट सीमित नहीं रहा। तो क्या होता, अलमारी में पड़ी रहती, जब तक वो जनता के बीच में न जावे, लोग उसे सुने नहीं, उसका विचार नहीं करें, उसका आनंद नहीं लें, उस पर ऊहापोह नहीं होवे, तो अकेले सीडी बनाने से क्या फायदा था। तो ये सोच करके नेक्स्ट स्टेप में गांव-गांव में कंप्यूटर भेजना, सीडी भेजना, लोगों को प्रोत्साहित करना कि आप सुनते हैं कि नहीं सुनते, क्यों क्यों आखिर ये सब किसको पड़ी है, क्या स्वार्थ है, समझ में आया। बस एक भावना कि ये जो अद्भुत वाणी है इससे दूसरे लोग क्यों वंचित रहें, इसी भावना से वो भेजे गए। फिर आप लोगों को तो गुजराती का अभ्यास है, गुरुदेव की टोन पता है, शब्दों का वो सब पता है। जिन्हें इसका अभ्यास नहीं है तो उनको ये तकलीफ हुई, वही आवाज साफ नहीं आती कि सुनाई नहीं पड़ता, तो गुजराती समझ में नहीं आती। तो धीरे 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 कितना विकास होता गया। आज जितने भी मुमुक्षु समाज के संचालित छोटे बड़े विद्यालय हैं, उन सब में गुरुदेव की सीडी चलती है और उस पर बच्चे फिर कमेंट्स करते, स्टूडेंट्स जो हैं वो उसके पॉइंट लिखते हैं, वो सुनाते हैं कि हमने क्या क्या मुख्य बिंदु निकाले हैं। अरे स्कूलों की तो छोड़ो, वहां तो आप टाइम टेबल में फिट कर सकते हैं तो वो तो इजी है। पंच कल्याणक जैसे भीड़ भाड़ वाले प्रोग्राम में भी, जहां इतनी भाग दौड़ हो हा ये सब होता है, तो उसमें भी सुबह के समय में गुरुदेव का भले आधा घंटे सही सीडी चले, फिर पब्लिक में से उसके प्रश्नोत्तर किए जावे, तो ये समझ लीजिए क्रांति ये भी जमीन पर आई। अभी और इसमें एक कड़ी जुड़ी है और वो ये कि गुरुदेव की वाणी को बेस बना के शिविर लगाए जावे। तो अभी है तो सब जिनवाणी की बात जैसे हम अभी मैं यहां से सोनगढ़ जाऊंगा, समझ लीजिए 21 तारीख को, तो 5 दिन का वहां शिविर रखा है। पिछले बार हमने शास्त्री लेवल के जो स्टूडेंट थे उनको बुलाया और उनके सामने 3 सेक्शन, एक इधर कमरे में, एक इधर कमरे में, एक उधर कमरे में, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, आधा आधा घंटे गुरुदेव की सीडी चली। फिर जो हमारे टीचर थे, जो सिलेक्टेड विद्वान थे, उनको उन्होंने उसका सार बताया, फिर बच्चों से पूछा, यानी एक उस पर ऊहापोह और मंथन होने का बहुत सुंदर प्रयोग प्रारंभ हुआ। पिछली बार शास्त्री लेवल पे चला, इस बार छोट और 9वीं-10वीं के बच्चों को भी बुलाया। ऐसा लगता है कि वो क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे, अरे 8 वर्ष में सम्यक दर्शन हो सकता है, हैं? और हम शंका करते हैं, भले वो पूरा का पूरा प्रवचन याद नहीं रख सकता, वो उस विषय की उतनी मीमांसा नहीं कर सकता, लेकिन बचपन से कान में वो शब्द पढ़ेंगे तो उसको एक उस वो अटैचमेंट उसका डेवलप होगा। तो ये करने वाले करते हैं, टीम करती है, पैसे वाले पैसा खर्च करते हैं, हम ऐसे भाग्यशाली हैं कि उनकी अनुमोदना करके ही पुण्य बांधते मेहनत करने वाले दूसरे हैं, हम तो एक आध पीरियड ले लिया तो ले लिया, बाकी सब मेहनत करने वाली टीम अलग है और पैसा खर्च करने वाली अलग है, मैनेजमेंट वाली अलग है, तो भी हम देख देख करके ही खुश होते रहते हैं। तो एक अपूर्व अवसर है और भावना तो ऐसी है, हमने तो कहा भी था, एक जो सागर के पास में एक स्थान अपना संकुल क्षेत्र बन रहा है, बन गया है द्रोणगिरी क्षेत्र में सिद्धायतन नाम से मुमुक्षुओं का, तो वहां जो स्वाध्याय हाल बन रहा है तो हमने तो प्रॉमिस लिया है कि जब उसका उद्घाटन होगा तो 5 दिन का गुरुवाणी मंथन शिविर वहां लगेगा और वो पब्लिक के लिए, कोई भी पब्लिक आए उसमें और यही सवेरे क्या बोलते हैं गुरुदेव का टेप, उसके ऊपर 3-4 विद्वानों का, ऐसा हर शिविर में हुआ, जितने भी विद्वत गोष्ठी हुई, चाहे वो सबसे पहले मुक्तागिरी में हुई थी, फिर पोन्नूर में हुई और इस तरह से, तो ये मुझे बड़ी प्रसन्नता है, इसलिए मैंने ये सब बात कही। आप देखो अभी मध्य प्रदेश में एक गांव है करेली, वो हमारे मामा का गांव है, हमको वहीं से रुचि लगी, तो वहां पे एक बहुत बुजुर्ग विद्वान अभी हैं, हो सकता है 90 बरस के हो गए, पंडित कपूर चंद जी। एक बार जब गुरुदेव की जन्म जयंती पोरबंदर में थी, और बहुत पुरानी बात है, 100 साल भी पहले की बात होगी, फिर वो तो 100 साल तो नहीं, लेकिन वो उस समय काफी युवा थे, तो पत्नी के जेवर गिरवी रख करके पोरबंदर गए थे, इतनी लगन कि चाहे, और ये सब क्रांति हुई है वास्तव में आत्मधर्म से। आत्मधर्म पत्रिका जो घर घर पहुंचनी चालू हुई, सवानी जी को कहां से चोट लगी, आत्मधर्म देखा तो उनका समझ लो करंट लग गया मानो। तो कपूर चंद जी के पुत्र हैं, वो 10 दिन का शिविर लगा रहे वहां पर, आसपास के गांव के 200-250 लोग कम से कम आवे, सारा खर्चा वो ज्यादा प्रमुख वो करेंगे, बाकी तो समाज से होगा, उसमें स्वानुभूति दर्शन की क्लास चलेगी। वही विषय जो सोनगढ़ में चलते थे वो विषय चलेंगे, निमित्त उपादान निश्चय व्यवहार। अभी हम भी सोनगढ़ में शाम के पीरियड में एक गुरुदेव का जो प्री सब्जेक्ट था क्रमबद्ध पर्याय निश्चय व्यवहार आया, कितना आया व्यवहार के बारे में, आज गुरुदेव ने कितना खुलासा किया, अपन को तो एक धारणा बैठ गई व्यवहार हे छे, उसका मतलब क्या है, ये बहुत गंभीरता से समझने लायक बात है। आप देखिए मैं 2-3 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, 269 पेज पर, कोई आज तात्विक विश्लेषण ज्यादा नहीं आया, प्रेरणा वाली बात, प्रेरणा देने वाली बात मुख्य रही। 269 पेज पर देखो नीचे का जो बड़ा पैराग्राफ है, जहां जिन मुनि नाथ यहां से शुरू हुआ है, उसमें नीचे से चौथी लाइन, जिन मुनि नाथो गणधरो आदि ये जे तत्व कया, देव गुरु शास्त्र 9 तत्व ए सिवाय ना बीजा गमे तेटला कहनार होए, आहा एना तत्वों मा विपरीत अभिनिवेश रहित, एना थी उल्टो जे अभिनिवेश अभिग्रह आग्रह तेना थी रहित, एनी परीक्षा करवी पड़ से के नहीं, परीक्षा करिया बिना वितरागनि आ वाणी छे के कल्पित करेली कोकनी छे, एवो निर्णय क्या थी थाए। इसमें अपने जैसे अपने परिचित लोग भी, कहना चाहिए कि मुमुक्षु लोग भी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी ने थोड़ी आत्मा की बात कह दी, किसी ने थोड़ी समय सार की बात कह दी, किसी ने नाम ले लिया समय सार का, अरे वाह ये भी समय सार की बात करते हैं, ये भी आत्मा की बात, गीता में भी देखो आत्मा जुदा है शरीर जुदा है, ये तो गीता में भी, अरे बेस तो सबका एक ही है, भले स्टाइल अलग अलग हुए, इतना बड़े दरिया दिली से लोग भाग जो है समन्वय करते हैं, हैं? बेस एक नहीं है, बेस में ही अंतर है भाई साहब, हैं? वहां अद्वैत ब्रह्म है और ईश्वर कर्तत्व है, तुम मेरी शरण में आओ, ज्यादा यहां लंबा नहीं करूंगा। उनका अर्जुन को मोह उत्पन्न हो गया, युद्ध भूमि में अर्जुन को मोह उत्पन्न हो गया, तो श्री कृष्ण ने उपदेश दिया तो मोह दूर कर दिया, तो उसका रिजल्ट क्या आया? मोह दूर करने के लिए तुम तो युद्ध करो, ये तो क्रमबद्ध में तो सब मरने ही वाले। अपना मुंह खोल के दिखा दिया श्री कृष्ण ने। 18 दिन बाद जो पोजीशन बनने वाली थी, कौन कौन सब स्वर्ग जाने वाले थे, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह वगैरह, वो उनने अपना मुख खोल के दिखा दिया। इतना तो सिद्ध, तो देखो गीता में भी क्रमबद्ध पर्याय की बात है। पर उसका रिजल्ट क्या आया? जिसका मोह दूर होता है वो राज्य के लिए युद्ध करता है या आरंभ परिग्रह का त्याग करके जंगल में जाके दीक्षा लेता है? मोह दूर होने के क्या लक्षण है? इसलिए भैया निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। आज चरणानुयोग चूलिका में आपने देखा होगा शुभोपयोगी श्रमण का कितना वर्णन आया। जो श्रमण शुभोपयोग में रहते हैं उनकी कैसी चर्या होती है, ये सब कितना खुलासा आया। तो ये जरा सा किसी ने आत्मा कह दिया और देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है तो हमको लगा वो तत्व सही है, ये धोखे में नहीं रहना। बराबर निश्चय व्यवहार प्रमाण नय की शैली से ये परीक्षा करना चाहिए। इसके लिए आप मोक्षमा प्रकाशक का जो सम्यक ज्ञान वाला प्रकरण है वो आप पढ़ें, 7वें अधिकार में परीक्षा की बात उसमें आती। अभी एक प्रॉब्लम सबको रहती है, जैसे इसमें भी लिखा है ये देखो 270 पेज पर सबसे नीचे मुमुक्षु पूछता है, बधाए पोतानी बात ने परम सत्यज कहे ने। कहे एम कहे पण शू थाय भाई। मैं एक बात कहता हूं कि आप मार्केट में जाते हैं, किसी को कोई मान लो महंगी चीज खरीदना है, 5 लाख का हार खरीदना है, कोई मकान खरीदना है, या छोटी से छोटी चीज एक शर्ट भी खरीदना हो वे, तो हर दुकान वाला ये कहता है कि हमारे यहां जो माल है वो सबसे बढ़िया है। तो सेल्समैन की तो ड्यूटी है कि वो अपने माल को अच्छा कहेगा ही कहेगा। तो अपन लोग जो कंज्यूमर हैं उनकी क्या ड्यूटी? जैसा सेल्समैन ने कहा वैसा मान लिया। हम भी तो परीक्षा तो करते ही है ना कि यार वहां पे वो माल है, ये ब्रांड का है, उसका ये रेट है, यहाँ ये है, कोई ना जितनी महंगी चीज होगी उतना ज्यादा, अरे वर्षों डिसीजन में लग जाते। एक फ्लैट खरीदना हो तो इधर देखा उधर देखा उधर देखा, उसका पेपर्स कैसे हैं, उसका फलाना कैसा है, इंजीनियर को दिखा करके उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, ऊपर से तो बढ़िया चमक दमक है, अंदर लीकेज है कि नहीं, ये सब देखते कि नहीं देखते है? वही मैं कह रहा हूं। कहने का आशय ये है कि पांच इंद्री के विषय कषायों की सामग्री लेने के लिए हम सेल्समैन पर भरोसा नहीं करते। हम जितनी हमारी बुद्धि है, और हमारी बुद्धि नहीं हो तो उसका कोई जो एडवाइजर हो, उसका जो सलाह देने वाले हो, हम उनकी सलाह लेते। तो ये तो भाव का अभाव करने का है भैया। तो इसमें किस सबने कह दिया कि हमारा सत्य है हमारा सत्य है, इससे हम कंफ्यूज क्यों हो जाते? हमें निर्णय करना चाहिए, परीक्षा करना चाहिए। ठीक है, परीक्षा करना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि परीक्षा कैसे करना? गुरुदेव ने तो कहा कि इस सितंबर में कहा है, स्थानकवासी में कहा है, ये सब कल्पित है, ऐसा है वैसा है। तो विवाद गुरुदेव पर भी लागू होती है कि अपने आप को सही सब सही कहते समझ में आए ना, हम कैसे परीक्षा करें? तो एक कसौटी में आपको बताता हूं, अगर आपके चित्त में कोई मुंझवण होती हो, उलझन होती हो, कंफ्यूजन होता हो, तो मैं कहता हूं कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। जो भी तत्व की बात आ रही है सुनना ध्यान से, वो भेद विज्ञान और वितरकता की ओर ले जाती है कि नहीं? अगर वो भेद ज्ञान और वितराग दशा इसका सपोर्ट करती है, इसका पोषण करती है, उसका जो निष्कर्ष है वो भेद ज्ञान और वितरागता में निकलता है तो वो वितराग देव की वाणी है, और अगर वो भेद ज्ञान और वितराग दशा की ओर नहीं ले जाती है, जैसा कि बार बार आता है राग में लाभ मनाती है, जड़ की क्रिया का कर्ता आत्मा को कहती है, तो समझ लेना वो वितराग की वाणी नहीं है। ख्याल में आया? और अपने शास्त्रों में भी चरणान योग की शैली में जो शरीर की क्रिया वाली बातें आती हैं, कैसा खाना ऐसा नहीं खाना, ये करना, मुनि की चर्या, श्रावक की चर्या, अपने शास्त्रों में भी आती है, तो उसके लिए नए विवक्षा है। जैसा कि आज आया कि ये व्यवहार नय का कथन है, परमार्थ नहीं, हो गया काम। तो परीक्षा कोई जम्बूद्वीप की नहीं करना है, वो जो है ना उधर अपना ये जम्बूद्वीप या सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा है कि नहीं, चांद पे गए हैं कि नहीं, ये बहस बहुत चलती, फालतू की चीजों में उलझता है जीव। अरे चार गति में अनंत काल से भटक रहा है, उसकी चिंता कर कि वैज्ञानिक चांद पे गए भी होंगे नहीं भी गए हों तो केवल ज्ञान हो जाएगा, तो सब देखने लगेगा कि चांद पे गए थे कि कहाँ गए थे, इतना कीमती मनुष्य भाव चांद में बर्बाद करे। समझ में आया? क्यों उसमें उलझना? जैसे लिखा है टोडरमल जी ने, जो अप्रयोजन भूत बातें हैं, कर्म प्रकृति की बातें हैं, कर्म उदय की बातें हैं, करणान योग की हैं, भूगोल की हैं, इतिहास की हैं, 24 तीर्थंकर हुए कि नहीं सिवाय आगम के, हमारे पास इसका क्या प्रूफ? आगम से ही मानना पड़ेगा ना। तो तीन अनियोग जो डायरेक्ट प्रयोजन भूत नहीं है, इनडायरेक्ट है, वो आगम से मान्य है, और जो 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, 9 पदार्थ है, मोक्ष मार्ग है, रत्नत्रय है, भेद ज्ञान है, स्वानुभूति है, समझ में आया? ये निर्णय करके, परीक्षा करके मान्य है। तो इस तरह से इस प्रयोजन भूत बातों की परीक्षा करना चाहिए। ये मुझे खास, ये जो आज परीक्षा वाला प्रकरण आया उसमें मुझे कहना था। अभी देखो 272 एक और इसमें टीकाकार मुनिराज ने अन्य समय बीच का पैराग्राफ में, अन्य समय ना तीर्थ नाथे कहेला, जोयू जरा झीणी बात छे, अन्य समय ना तीर्थ नाथे, उनके लिए भी तीर्थ नाथ शब्द का प्रयोग है। शायद आपको मालूम होगा अपने यहां एक आचार्य हुए समंत भद्राचार्य, ये कुनकुंदाचार्य के बाद में हुए हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, कई ग्रंथ हैं, रत्नगढ़ साहब का चार भी उनका है, और आप तो मीमांसा, जिसका दूसरा नाम है देवागम स्तोत्र। तो बड़ी विचित्र बात, अभी अभी मैंने उसका 15 दिन पहले देवलाली में, उसमें 114 श्लोक हैं, न्याय का बहुत गंभीर ग्रंथ है, उसमें श्यादवाद और सप्तभंग की बहुत सिद्धि की है, और क्षणिक एकांत, नित्य एकांत, सत एकांत, असत एकांत, यानी दुनिया भर के जितने एकांत मत हैं उनका खंडन किया है, न्याय का ग्रंथ है वो। तो और दूसरे ग्रंथों में तो मंगलाचरण करते हैं तो इष्ट देव को नमस्कार करते हैं, स्वयं उन्होंने नृतिगढ़ श्रावकाचार में वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया, नमस्त्री वर्धमान आये निर्धूत कलिलात्मने। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, कुंदकुंदाचार्य जैसे महान आचार्य भी समय सार लिखा तो सिद्धों को नमस्कार किया, प्रवचन सार का तो 5 गाथाओं का मंगलाचरण बनाया, नियम सार में वीर भगवान को नमस्कार किया। तो ये परंपरा है, मंगलाचरण में देव को, इष्ट देव को वंदन किया जाता है। लेकिन गजब है वो जो आप तुम्हें मानसा है, उसमें वंदना करने के बदले सीधे चैलेंज करते, हे भगवान आपके समोसरण में देव आते हैं, आपके 64 चमर ढुलते हैं, 3 छत्र हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं, ऐसा नहीं समझ लेना, इज अ नेगेटिव। ऐसे 3 श्लोक हैं शुरुआत में ही, देवागम नभोयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। देव आते हैं, आप आकाश में गमन करते हो, आपके 64 चमर सिंहासन छत्र इत्यादि अष्टप्राती आ रहे हैं, इसलिए मैं प्रभावित हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरा परमोदार एक शरीर है तो उसे क्या होता, देवों का भी व्यक्ति एक शरीर है, तो आपका परमोदार एक शरीर है इसलिए हम आपको नमस्कार करेंगे, ऐसा भी नहीं है। अभी तीसरे छंद में तीर्थकृत समयानाम च परस्पर विरोधतः सर्वेषाम आप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेद गुरु। वो कहते हैं कि मैं तीर्थंकर हूं इसलिए मुझे नमस्कार करना चाहिए। समझ लो क्वेश्चन उठाया, तो समद्भद्राचार्य कहते हैं भगवान तीर्थंकर तो बहुत से हैं, ऐसा ये 2420 वाले नहीं, ये तो वास्तव में तीर्थंकर है। देखो सुनो, जैन सिद्धांत में तीर्थंकर किसे कहते हैं, इसकी एक तो व्याकरण से व्युत्पत्ति होती है और एक सिद्धांत से होती। जैसे आज गुरुदेव ने सकल शब्द के दो अर्थ किए ना, तो व्याकरण से कैसी होती है, पहले सिद्धांत की बताएं। जिसको तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का उदय होता है और उस उदय में 34 अतिशय और 8 प्रातिहारे होते, वो तीर्थंकर कहलाते हैं। 34 अतिशय सम 10 जन्म के 10 अतिशय, केवल ज्ञान होने पर 14 अतिशय, देव का 14 केवल ज्ञान के 10, और अपने छत्र चमर सिंहासन भारी है ना, ये तब प्रातिहारे सुखकारी शांति पाठ में पढ़ते। तो ये चामर आदि विभूतियां, समोसरण की रचना, दिव्य ध्वनि खेलना, ये सब तीर्थंकरों के उसमें होता है, ठीक है। लेकिन दूसरा अर्थ ये है, जो किसी धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते, तो अपने यहां जो तीर्थंकर हुए उन्होंने समझ लो वीतराग मार्ग का, रत्नत्रय मार्ग का, मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन किया। तत्वासूत में है, मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूवृतां ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। तो वे मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन करने से तीर्थंकर कहलाते। बाकी सब आचार्यों ने किया, उनने किया, वो उसकी परंपरा में है, मूल तो वो है। लेकिन व्याकरण से जिसने बौद्ध मत चलाया, सांख्य मत चलाया, वेदांत मत चलाया, कोई न कोई मत का प्रवर्तन करे ना, उसको भी तीर्थंकर बोलते। इसलिए टीकाकार मुनिराज ने अन्य समय ना तीर्थ तीर्थ नाथे कहेला। अन्य समय, समय माने भी मत, मत भी होता है, समय शब्द के बहुत अर्थ है। समय माने टाइम है, समय माने आत्मा, समय माने मत, समय माने सिद्धांत, ऐसे कई अर्थ होते। तो अन्य समय ना तीर्थ नाते कहेला, बहु आकरूं लगे बापू तारा हितनी बात छे। ये तो उन्होंने 5-7 मिनट बहुत करुणा से, करुणा होना जुदी चीज है लेकिन सत्य को छुपाया नहीं। अच्छा देखो, डॉक्टर मरीज पर करुणा करे कि नहीं करे, ये बताओ। करुणा तो होती है तभी तो इलाज करता है, लेकिन उस करुणा का स्वरूप दूसरा होता है। अपन कहेंगे वो इंजेक्शन से डरता है तो इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, तो वो बातों में लगा देगा, तुम्हारा क्या नाम है, तुम स्कूल जाते कि नहीं जाते, तुमको प्राइज मिली कि नहीं मिली, थोड़ा बातों में लगा, जल्दी से इंजेक्शन लगा दे। इंजेक्शन लगाना नहीं छोड़ेगा, ये करुणा की है तो ऑपरेशन नहीं करोगे, इंजेक्शन नहीं लगाओगे, कड़वी दवाई ने, दवाई कड़वी लगे चाहे अच्छी लगे वो तो खानी पड़ेगी। आत्मानुशासन में ऐसा है कि ये इसको तुम कड़वी दवाई, जैसे रोगी कड़वी दवाई को लेता है वैसे कड़वी दवाई समझ के पीना, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। आज ये कहें तुमने सुखी करवा माटे, तुम्हारा दुख दूर करवा माटे कहिए चाहिए, देखो ये करुणा कहलाती। करुणा का मतलब जो सामने वाले को पसंद है वो कहना, सामने वाले को खुश करना, मरीज को खुश करना, ये वो सच्चा डॉक्टर नहीं है। मरीज को निरोग करना वो सच्चा डॉक्टर है। देखो भाई, विपरीत अभिप्राय छोड़वो ए सुखनु कारण छे। विपरीत अभिप्राय अमे संप्रदाय मा जन्मा माटे अमे मानेलो भाव ठीक छे एम आग्रह न होए। देखो संप्रदाय का आग्रह, इसमें टोडर मजी ने एक बहुत मार्मिक बात लिखी है, वो कुल अपेक्षा धर्म वाला आया था ना, उन्होंने लिखा है कि अगर हम कुल परंपरा से या संप्रदाय के आग्रह से सत्य को भी माने तो भी वो संप्रदाय में ही जाएगा। अभी जैसे अपना जो कुल है, आपको भी आपके पिताजी से, किसी को दादाजी से, वो गुरुदेव के संपर्क में आए, तो अभी आप तो कन्वर्टेड नहीं हुए ना, आप तो मूल हुए ना। बोलो आप लोग मूल दिगंबर हो कि कन्वर्टेड दिगंबर हो? अच्छे भाई। अभी भी ऐसा लगता है कि ये जो हिंदी भाषी आते हैं पंडित लोग, ये तो मूल दिगंबर है, हम लोग कन्वर्टेड। अरे नहीं हो कन्वर्टेड, वो इतने बड़ी क्रांति तुम्हारे दादाजी कर गए थे, समझ में आया, चेंज होने वाली, वो नहीं करते तो तुम कहां से इसमें आ जाते। अपन सब लोग मूल दिगंबर हैं, वैसे तो सारी सृष्टि मूल दिगंबर है। समझ में आया, कुदरत में जो जन्मता है वो दिगंबर ही जन्मता है, फिर राग द्वेष के कारण वस्त्र आते हैं, और जो धारणाएं जो संप्रदाय के वस्त्र विचारों पर, जो इस तारकवासी है कि श्वेतांबर है कि हिंदू है कि मुसलमान है कि फलाना है ढिकाना है, वो तो सब उसको जन्म के संस्कार, गर्भ के संस्कार मिलते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं। स्वभाव से तो सब व्यक्ति भगवान आत्मा ही है, हैं? गुरुदेव की करुणा देखो, संप्रदाय मां जन्मा माटे अमे मानेलो भाव ठीक छे एम आग्रह न होए। ये आग्रह छोड़ी ने वीतरागे कहेला तत्वो तीर्थनाथे कहेला एम आवियु ने, अन्न तीर्थनाथे कहेला नो आग्रह छोड़ी दे। अहीं तो ए पण आवियु प्रभु शू करिए, श्वेतांबरे पण कल्पित करेला छे तो एनी पण तत्वनी दृष्टि छोड़ी दे। ये देखो, ये 273 पेज पे देखो, सबसे ऊंचा ऊपर की पंक्तियां, यही अनुसंधान में है। दिगंबर संतोए मुनियोए कहेला तत्व सिवाय बीजा कोई पण मुनियो नाम धरावी ने कहेला तत्व, तेने विपरीत पदार्थ मा अभिनिवेश दुराग्रह। अभी सुनना, आवू खुल्लू कहता दुख थाए, क्या मतलब है इसका? गुरुदेव को कोई वो अपनी कषाय मान कषाय का पोषण कर रहे हो, या कोई अपने को सर्वोच्च गुरु बताने की कोई उनके अभिप्राय में होवे, ऐसा तो उनके व्यक्तित्व में था ही नहीं। वो तो एक समझ लो वीतराग मार्ग के परम आराधक साधक के रूप में ही रहे अपने सामने, ख्याल में आया ना। तो एक समय की बात है, सोनगढ़ में प्रवचन सुन के भाई परमागम मंदिर, उसका वो था पंच कल्याणक महोत्सव, मार्च 1974, आप गए थे उसमें, थे ख्याल है कुछ? हाँ, तो हम भी गए थे। तो फिर बाद में स्वाध्याय भवन के सामने गुरुदेव का पाठ बाहर लगा देते थे, तो पब्लिक तो बहुत, सैकड़ों लोग बैठते थे, चर्चा में हजारों लोग थे। किसी ने पूछा दिगंबर और श्वेतांबर में क्या अंतर है, गुरुदेव बोले सत्य के हजारों बोलों में अंतर है, एक अंतर कहां से बतावे, बोलो आप है? उसका एक बहुत बड़ा कारण था, अगर वो थोड़ी लीपा पोती वाली माने नहीं, वो तो एक आध दो बातों में फर्क है कि वो स्त्री मोक्ष मानते हैं हम नहीं मानते हैं, वो सबस्त्र मुनि मानते हैं हम नहीं मानते, बाकी तो सब एक ही है, बाकी तो सब ऐसी लीपा पोती करते तो जो सब बैठे हैं उधर से भी आए हुए लोग, उनको सत्य का निर्णय कैसे होता। इसलिए उन्होंने इसमें कोई समझ लो रहम नहीं की सत्य को खुला करने में, लेकिन करुणा के साथ में, किसी का अपमान न हो, किसी का दुख नहीं लगे, किसी को ऐसा नहीं लगे कि हमको झूठा बता रहे हैं। इसमें एक समझ लो बहुत अच्छी समझने लायक बात यह है कि सामने वाला आत्मार्थी होवे तो फिर उसको ये नहीं लगा कि हमारा धर्म किसी का होता है क्या। दो चार दिन पहले कहा था मैंने, सूर्य का प्रकाश किसका होता है, ऐसे सत्य का प्रकाश किसका होता है, वो किसी का होता है क्या, उसके ऊपर दिगंबर की मोहर के श्वेतांबर की मोहर लगती है क्या, वो तो जो स्वीकार करे उसका है। हम सब आत्मा हैं, वो आतंकवादी भी बेचारे जो इतने दुखी हैं और हिंसा में सुख खोज रहे हैं, वे भी भगवान आत्मा है। तो फिर सब आत्मा है, तो आत्मा के हित के लिए जो है वो धर्म है। इसमें फिर संप्रदाय की बेड़ियां तोड़ने के लिए सामने वाले को भी ये समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूं और मुझे आत्मा का हित करना है, उसके लिए ये बात। दवा किसकी होती बोलो, दवा बनाने वाली कंपनी मुसलमान की हो तो दवा मुसलमान हो जाएगी, बताओ आप। दवा देने वाला प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाला डॉक्टर मुसलमान हुए तो क्या वो दवा पे मुसलमान की मोहर लग जाएगी? जो भी समझ लो मलेरिया की, वायरल की, कैंसर की, डायबिटीज की जो भी दवाएं आती हैं, वो दवा तो रोग को मिटाने वाली होती है ना, तो जिसको रोग मिटाना हो वो लेता है। उसमें कोई संप्रदाय का भेद करता है कि हमारे संप्रदाय की है कि तुम्हारे संप्रदाय की है? तो लोक में, लौकिक जीवन में हम बिल्कुल संप्रदायातीत होते हैं, पक्षातीत होते हैं। एक दुकान पे बैठा है व्यापारी दुकान लगा करके, तो ग्राहक आता है तो उसको पता है कि ये खान साहब हैं, ये बगल में रहते हैं, खान साहब हैं, तो ये मुसलमान हैं, पता है। लेकिन व्यापार करने में, माल देने में, पैसा लेने में वो देखता है कि ये मुसलमान, इस कारण क्या उसके व्यवहार में कोई फर्क पड़ता है? हैं, स्त्री का, पुरुष का, बालक का, हिंदू का, मुस्लिम का? मैं तो कहता हूं व्यापारी से ज्यादा संप्रदायातीत और पक्षाती क्रांत दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। वो तो वो पक्का व्यापारी नहीं, समझ में आया? कि मैं तो अपना माल मुमुक्षुओं को ही बेचूंगा, ऐसा जरा नक्की करके देखो। कि मैं अपना माल जो है वो मुमुक्षुओं को ही बेचूंगा, दूसरों को नहीं। वो उनके लिए कोई प्रोजेक्ट बने वो जुदी चीज है। तो ये सब बहुत मार्मिक बातें हैं, ये गुरुदेव ने बड़ी करुणा से बातें की। अभी 275 पेज आपने बहुत सुना है, इसको ध्यान से सबने, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। वैसे तो मौसम इतना बढ़िया है, बाहर का डिस्टर्ब नहीं है, ठंडक भी रहती है, तो नींद लेने के लिए भी अच्छा स्थान है। ये तो भाई देखो, हर एक को ये प्रॉब्लम होती है, थोड़ा प्रमाद तो आता ही है। मैं उसके लिए जो प्रैक्टिकल उपाय करता हूँ वो आपको बता देता हूँ, गुप्त बात है। कभी कभी मुझे समझ लो, जैसे देवलाली में अभी मैंने एक बार तो मंदिर जाके आए, फिर बाद में चाय नाश्ता लिया, अभी प्रमाद आने लगता है और फिर जाना है। कभी कभी प्रवचन वहीं से सुनता हूँ घर से, कभी मान लो प्रवचन करना है तो जाना होता है, तो बहुत अनइजी लगता है। तो समझ लो आप एक दो लोटा पानी से छींटे आप लगा लीजिए, हाँ, अच्छे से मुंह धो के आप फ्रेश हो जाइए, तो फिर आपको नींद नहीं आएगी गारंटी से, समझ में आया? फिर उसमें ताजगी रहेगी। मैं तो आगे बैठता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता, लेकिन लोग बताते हैं। देखो ये ऊंचा नीचे ऊपर का पैराग्राफ, अहीं तो कहे छे जैनोए कहेला तत्वो त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ परमात्मा, एनी परंपरा मां जे आवेला तत्वो निश्चय व्यवहार नए थी, निश्चय थी स्वथी छे व्यवहार मां निमित्त जोड़े होए, निमित्त नथी एम नथी पर निमित्त थी थतु नथी, इटले निश्चय ने व्यवहार बे मानवा जोइए। बोलो आप, दोनों को मानना चाहिए। अभी लोग कहेंगे जो दुनिया में बातें चलती हैं, एकांत है, एकांत निश्चय को मानते हैं, व्यवहार का निषेध करते हैं, तो इसको पढ़ो आप, इसमें कहां व्यवहार का निषेध है? निश्चय को भी मानना, व्यवहार को भी मानना, परंतु निश्चय को निश्चय मानना, व्यवहार को व्यवहार मानना,
दोनों को सरखा नहीं मानना। ये
देखो, अपनी बेटी की शादी हुई, फिर वो ससुराल गई, फिर दो चार दस दिन बाद वापस आ गई, फिर महीना भर बाद जमाई राजा आए उसको लेने के लिए। ऐसा पहले बहुत होता था, अभी तो सिस्टम सब चेंज हो गया। तो वो अकेले तो आने में अच्छा नहीं लगे ना, पहली पहली बार ससुराल जावे शादी के बाद में तो अच्छा नहीं लगे, तो दो चार दोस्त भी आए। बात समझ में आई? तो जमाई वो ही गाड़ी में बैठ करके जमाई राजा भी आए हैं, उनके दो चार दोस्त भी साथ में। अब अपना क्रिया परिणाम और अभिप्राय है। तो वो अपना खाने में पीने में व्यवस्था करने में उनके रहने वगैरह की में कोई फर्क करते? वो तो सब एक सरीखा रहता है, उसमें फर्क नहीं करते। लेकिन जो विदाई के समय कवर देते हैं वो एक सा होता है कि यही बताओ। और आजकल कवर का सिस्टम अच्छा हो गया, पता ही नहीं चलेगा किसमें क्या है, है? तो उसमें जानते हैं एक बात। और ये तो कवर देना तो परिणाम है, सम्मान करना। अभिप्राय में बेटी की जो विदाई है किसके आश्रय से कर रहे? सबके आश्रय से के एक के आश्रय से हैं? सब सभी जाएंगे, सब साथ में जाएंगे, बातचीत करेंगे, हंसी मजाक। जमाई तो थोड़ा सभ्य होगा तो शिष्टाचार भी रखेगा, दोस्त लोग जरा ज्यादा उछलेंगे। समझ में आया? तो लेकिन वो बेटी भी जानती है कि मैं पति के साथ जा रही हूँ, मेरा आश्रय तो पति है, उसके साथ में भले कितने भी लोग हुए बदा जानेला प्रयोजन वांच है। ऐसा है भैया, ऐसे ये आत्मा का व्यवहार यानी गुण स्थान मार्गणा स्थान जानेला प्रयोजन वांच है, अने मोक्ष मार्ग का व्यवहार भक्ति दया दान व्रतशील संयम ये जानेला होता है। एक बहुत मार्मिक बात इसमें आई, वो शायद नेक्स्ट पेज पे है, 276 पेज पे भरत चक्रवर्ती का कितना सुंदर वर्णन किया। जब सबदेव प्रभु मोक्ष पधारे तो इंद्र आया, वो तो मोक्ष कल्याणक मनाने आए होंगे, फिर भरत को जरा शोक तो हुआ ही। कभी कभी गुरुदेव ऐसा कहते, पिता चले गए इसका शोक नहीं है, आज भरत नो सूर्य अस्त थई गयो। भरत नो एटले भरत चक्रवर्ती का, भरत क्षेत्र का। समझ में आया? अरे अब कोई दिव्य ध्वनि सुनाने वाला, मोक्ष मार्ग बताने वाला साक्षात परमात्मा अभी नहीं रहा। खैर पिता का भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा है तो ग्रस्त आश्रम में ही ना भरत अभी, तो तुमको तो इसी भाव में मोक्ष जाना है। तो भरत बोले, हमको खबर है, देखो पता है हमको कि हमको इसी भाव में मोक्ष जाना है, लेकिन राग है तो है, अब उसके लिए हम क्या करें है? हम तो राग के भी ज्ञाता हैं, ये तो अंतर्दृष्टि की बात है, लेकिन राग के निमित्त से बाहर की क्रिया होगी कि नहीं होगी? शोक होगा तो आंखों में आंसू भी होंगे, तो वो जाने जो प्रयोजन वांच है उसमें उससे उन्होंने ये सब निकाला। अंत अंत में थोड़ा एक नए टाइप की बात है, ये 277 पेज। सकल जिन एवा भगवान तीर्थादि नाथ ना चरण कमल ना उपजीव को, बोलो जो अपनी आजीव का यानी जीवन जिनका जिनेन्द्र भगवान के चरणों में बीतता है। आजीव का मतलब नौकरी वगैरह नहीं, जिनकी लाइफ जिनका जीवन जिनेन्द्र भगवान के चरणों में बीतता है, ऐसे गणधर आदि वो परमार्थ जैन है। फिर गुरुदेव ने श्रावक और सम्यक दृष्टि को भी उसमें ले लिया कि वो भी जैन है, क्योंकि वो है ना घट घट अंतर जिन बसे घट घट अंतर जैन। तो वास्तव में जिनका जो जिनको आदर्श बनावे, जिन यानी जितेंद्री मोराग द्वेष को जीतने वाले उनको जो आदर्श बनावे वो जैन है। अपन सोच लो, अपन तो है ही, इसमें क्या शक है।
कि संप्रदाय से हैं कि कुल से हैं कि नाम से हैं कि काय से हैं। तो ये अमृतवाणी है, यहाँ तो इसका समझ लो सारे भारत के लिए एक आदर्श केंद्र है ये, है कि जिसमें दुनिया भर के लोगों में प्रसिद्धि है। जिनको भी बम्बई आते हैं तो वो ये सोच के आते हैं कि हमको वो मंदिर दर्शन करने जरूर जाना है। हमारे इधर के लोग जो हैं वो एड्रेस पूछते हैं, सब इंक्वायरी करते हैं और देख करके बड़ा, जैसे देवों ने आकर के अकृत्रिम चैत्यालय बना दिया होगा, है ऐसा एक भव्यता आने पर पता चलेगा हम कोई जिनेन्द्र देव के स्थान पे आए हैं, ऐसी फीलिंग जो होती है हमको बड़ा समझ लो प्रसन्नता है कि एक सहज योग बन गया। आपका प्रेम वात्सल्य वगैरह सब हमें भरपूर मिला और स्वाध्याय का लाभ मिला, गुरुदेव की वाणी का मंथन करने का लाभ मिला, तो ये तो हमारा सौभाग्य है, उसके लिए हम आपको आभार भी व्यक्त करते हैं। अभी मधु भाई की बहुत भावना है कि जो मैंने एक छंद बोला था युगल जी की कविता का, लो रोको तूफान चला रे, शायद ये युगल जी ने बस में इसकी रचना की थी ऐसा सुना है, मुझे पक्का याद नहीं है, सोनगढ़ से लौटते समय या जो भी हो। इसमें गुरुदेव की अंतर परिणति, परिवर्तन के समय उनकी दृढ़ता और समाज की का रिएक्शन, ये सब बातों का वर्णन है। अब ये भक्ति तो नहीं है, ये तो एक गीत है। तो जैसे अपन राग तान से गाते हैं, सस्वर पाठ करते हैं, वैसे में मजे नहीं आएगा। हाँ, ये तो गद्य पाठ ही होगा जैसा युगल जी खुद करते थे। आया इसमें, लो रोको तूफान चला रे, पाखंडों के महल ढहाता, लो रोको तूफान चला रे। ढहाता समझते, ऐसे बुलडोजर चला देते ना बिल्डिंग के ऊपर तो एक मिनट में सारी बिल्डिंग गिर जाती है, तो जो पाखंडों के महल हैं उनको नष्ट करता हुआ गुरुदेव का तूफान चला। कैसे थे गुरुदेव? सह न सका जो मिथ्या तम की सीमा का जीवन में बंधन। मिथ्यात की सीमा वो सहन नहीं हुई, जो मिथ्यात की क्रियाएं थी, विचार थे। रह न सका अवरुद्ध वहां जो बढ़ने लगा हृदय का स्पंदन। एक दिवस अंतर रवि जागा, पुण्य जागरण बेला आई, जिसकी ज्ञान चेतना नेरे चिर निद्रा से ली अंगड़ाई। जिस देखो जो परिवर्तन किया वो तो बाहर में दिखा, कब किया? महावीर जयंती, चैत शुक्ला 13 संवत 1991। मैं तो एक कोई शायद एक ऐसा सिलेबस भी बना है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए गुरुदेव के जीवन की घटनाएं तारीख बार जो हैं, वो एक लेख भी लिखा था, शायद यहां भेजा था। तो असल में तो जब निर्णय किया कि मार्ग ये समय सार में है, यही सच्चा है, तो वही परिवर्तन की वास्तविक बेला है। तो बाद में तो घोषणा हुई है, एक दिवस अंतर रवि जागा, पुण्य जागरण बेला आई, जिसकी ज्ञान चेतना ने रे चिर निद्रा से ली अंगड़ाई, जिसकी करवट से संशय का चिर सिंहासन डोल चला रे। करवट माने परिवर्तन लिया तो जो संशय विभ्रम अनद्यवसाय मिथ्यात था वो उखड़ गया, उसके कुर्सी उखड़ गई। निखिल विश्व पथ पाए ये मैं करुणा का संसार समेटे, सारे जगत को सत्य मार्ग मिले ऐसी करुणा, अपनी एक श्वास में रे जो संशय तम का मरण लपेटे। वाह, मतलब श्वास प्रश्वास में सत्य का अनुभव, जिसकी प्रज्ञा के प्रताप से कर्तृवाद को थी हैरानी। इसमें कर्तावाद लिखा है, कर्तृवाद को थी हैरानी। वाह, गुरुदेव की बुद्धि के सामने जो परद्रव्य में और राग में कर्तापने की मान्यता थी वो ही हैरान हो गया कि अभी मेरा क्या होगा, इसके सामने मैं कैसे टिकूंगा, ऐसा कर्तृवाद को थी हैरानी। वो भाषा कर्तृवाद, वो आर्हत मत जैसा समझ लो, वो व्याकरण का शब्द है, कर्ता उसका हिंदी अनुवाद। अरे मृतक को मिली चेतना, सुन जिसकी कल्याणी वाणी, अरे मुक्ति के सुंदर पथ का कर्ता जो जय घोष चला रे, पाखंडों के महल ढहाता, लो रोको तूफान चला रे। फिर जब परिवर्तन का समाज को पता चला तब क्या हुआ, बोली दुनिया अरे अरे रे, मात पिता का धर्म न छोड़ो, जिसमें तुमने जन्म लिया है उस पथ से अब मुंह मत मोड़ो, हरी भरी सी कीर्ति लता है आपका यश पताका, यश की बल्लरी बेला वो हरी भरी हो रही है, दिग दिगंत में व्याप्त तुम्हारी, यह लो सिंहा सन लो, लेकिन रखो लाज हमारी। दुनिया क्या कहेगी, इतने बड़े धर्मगुरु और उनने छोड़ दिया, मतलब हमारे तो पोलम पोल है, सब यही समझेंगे जगत के लोग हैं। अरे तुम्हारे इस निश्चय से भूतल पर भूचाल मचारे, पाखंडों के महल ढहाता, लो रोको तूफान चला रे। तो हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था, हमारे यहाँ तो उस समय तो मैं तो समझ लो बहुत पुरानी बात है, इस एरिया में तो जब गुरुदेव ने परिवर्तन कर लिया बाद में धीरे धीरे खबर पड़ी, ऐसा वो इतिहास बहुत है उसका। तो गुरुदेव ने क्या जवाब दिया, उत्तर मिला धर्म शिशु जननी के अंचल में नहीं पलता है। माता धर्म रूपी शिशु जननी यानी माता के दूध से नहीं पलता है, वो तो लौकिक माता है, और पिता की परंपरा से बंधकर धर्म नहीं चलता है। हमारे कुल में तो ऐसा होता है, हमारे कुल में तो ऐसा होता है। अरे लोक की सीमाओं को छोड़ धर्म का संदन चलता, धर्म का रथ वो लौकिक मर्यादाओं से नहीं बंधा रहता, ज्ञान चेतना के अंचल में प्यारा धर्म निरंतर पलता। कहाँ होता है धर्म, ज्ञान चेतना, चेतना की परिणति, चेतना की अनुभूति। सिंहासन क्या धर्म, देह की ममता तक को छोड़ चला रे, पाखंडों के महल ढहाता, लो रोको तूफान चला रे। प्राणों का भीषण संकट भी उसका पथ नहीं मोड़ सका रे, लोगों ने धमकी दी थी ना कोटि कोटि आंसू का वर्षण उसका व्रत नहीं तोड़ सका रे, रे उत्तुंग हिमाचल सा बेरोक बढ़ा वह अपने पथ पर, जिसने उसके पथ को रोका झुका उसी का मस्तक भू पर, पर्वत ने भी उसे राह दी। देखो समझ लो जो संकल्प लेकर के आप चलेंगे तो समुद्र भी राह देगा, पर्वत भी राह देगा। खंड खंड हो वज्र गिरारे का पाखंडों के महल ढहाता, लो रोको तूफान चला रे। जिसको राह मिली उसको अब चाह रही क्या शेष बताओ, अब क्या चाहिए। जिसको थाह मिली उसको परवाह रही क्या शेष बताओ, उसने युग की धारा पलटी वह अध्यात्म क्रांति का सृष्टा, एक दिव्य संदेश विश्व को चेतन केवल ज्ञाता दृष्टा। रे अणु अणु की आजादी का शंखनाद वह फूंक चला रे, पाखंडों के महल ढहाता, लो रोको तूफान चला रे। अरे वीर के जन्म दिवस पर परिवर्तन का दिन, अरे वीर के जन्म दिवस पर भूतल का अभिशाप मिट गया, अरे वीर के जन्म दिवस से एक नया इतिहास जुड़ गया, अंधकार में युग सोता था घुटती थी जीवन की श्वासें, पानी में भी पड़े हुए थे अरे मीन युग युग के प्यासे। क्या मतलब है इसका, ये वास्तव में हम लोगों के लिए है, दिगंबरों के लिए, पानी में भी प्यासे थे, माल हमारा ही था मगर हमें को पता नहीं था। तेरी पावन तेरा पावन पुनर्जन्म ये वसुधा का वरदान बना रे, पाखंडों के महल ढाता, लो रोको तूफान चला।
गुरुदेव श्री के चरणों में बारंबार वंदन है और अब मैं ये यही विराम लेता हूं।